श्रीमद् भगवद् गीता यथारूप अध्याय 16 श्लोक संख्या 8 अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापकाचार्य के द्वारा असत्यम अप्रतिष्ठम से जगद आहुर स्वरम अपरस्पर संभूतम के मान्यत काम हल्दिकम तात्पर्य वे अर्थात असुरम असुरी प्रवृत्ति वाले वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न होते हैं और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। आसुरी लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह जगत माया जाल है, इसका ना कोई कारण है, ना कार्य, ना नियामक, ना कोई प्रयोजन, हर वस्तु मिथ्या है। उनका कहना है कि यह दृश्य जगत आकस्मिक भौतिक क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं के कारण है। वे यह नहीं सोचते कि ईश्वर ने किसी प्रयोजन से इस संसार की रचना की है। उसका अपना सिद्धांत है कि यह संसार अपने आप उत्पन्न हुआ है और यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं कि इसकी पीछे किसी ईश्वर का हाथ है। उनके लिए आत्मा तथा पदार्थ में कोई अंतर नहीं होता और वे परम आत्मा को स्वीकार नहीं करते। उनके लिए हर वस्तु पदार्थ मात्र है और यह पूरा जगत मनो अज्ञान का पिंड हो। उनके अनुसार प्रत्येक वस्तु शून्य है और जो भी सृष्टि दिखती है वह केवल दृष्टि भ्रम के कारण है। वे इससे सच मान बैठते हैं कि विभिन्नता से पूर्ण यह सारी सृष्टि अज्ञान का प्रदर्शन है। जिस प्रकार स्वप्न में हम ऐसी अनेक वस्तुओं की सृष्टि कर सकते हैं जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता, अतः जब हम जाग जाते हैं तो देखते हैं कि सब कुछ स्वप्न मात्र था। लेकिन वास्तव में यद्यपि असुर यह कहते हैं कि जीवन स्वप्न है, लेकिन वे इस स्वप्न को भोगने में बड़े खुशहाल होते हैं। अतः वे ज्ञान अर्जन करने के बजाय अपने स्वप्न लोक में अधिकाधिक उलझ जाते हैं। उनकी मान्यता है कि जिस प्रकार शिशु केवल स्त्री पुरुष के संभोग का फल है, उसी तरह यह संसार बिना किसी आत्मा के उत्पन्न हुआ है। उनके लिए यह पदार्थ का संयोग मात्र है जिसने जीवों को उत्पन्न किया, अतः आत्मा के अस्तित्व का प्रश्न ही नहीं उठा। जिस प्रकार अनेक जीवित प्राणी अकारण पसीने ही से स्वेदज तथा मृत शरीर से उत्पन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार यह सारा जीवित संसार दृश्य जगत के भौतिक संयोगों से प्रकट हुआ है। अतः प्रकृति ही इस संसार की कारण स्वरूप है, इसका कोई अन्य कारण नहीं है। वे भगवत गीता में कहे गए कृष्ण के इन वचनों को नहीं मानते। माया अध्यक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम, सारा भौतिक जगत मेरे ही निर्देश के अंतर्गत गतिशील है। दूसरे शब्दों में असुरों को संसार की सृष्टि के विषय में पूरा पूरा ज्ञान नहीं है। प्रत्येक का अपना कोई न कोई सिद्धांत है। उनके अनुसार शास्त्रों की कोई एक व्याख्या दूसरी व्याख्या की ही समान है, क्योंकि वे शास्त्रीय आदेशों के मानक ज्ञान में विश्वास नहीं करते। ओम ज्ञानसिंहस्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुर मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा बाह्यं तदाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयतापदकमलं श्रीगुरुं नमैष्यमांश्च श्रीरूपं सागजातं सागवैतम सर्वधूतम वर्जुन सहित कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादम सहगन ललिता कृष्ण सिंधो दीन बंधो जगत्पते कांत राधा तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णभानुसुते देवीभ्य कृपा सिंधुभ्यो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम
हरे राम
राम राम हरे हरे।
तो ये एक प्रचलित मतवाद है कि सब कुछ जो हम देखते हैं, सब कुछ जो जागत नहीं है, एक्चुअली जागत नहीं है, क्योंकि कोई जागत नहीं है। वो एक मतवाद है, हम इसको स्वीकार नहीं करते। वो ऐसा मतवाद को हम तिरस्कार करते कि वो सही नहीं है, क्योंकि जागत की अस्तित्व है। एक प्रकार के दार्शनिक है जो बोलते हैं तो सब कुछ स्वप्न है। रात को नींद में हम स्वप्न देखते हैं और इसकी कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, तो स्वप्न तो स्वप्न है। तो ऐसे व्यक्ति बोलते हैं कि जागृत अवस्था में भी सब कुछ जो दृश्य है इसकी वास्तविक अस्तित्व नहीं है, स्वप्न जैसे है। तो हम जो वैष्णव है, भगवान का वचन जो भगवत गीता में वो ही हम मानते हैं। और गीता में हम पता मिलते हैं कि जुड़ो और माया ही है, लेकिन माया शक्ति कैसे चलती है। तो यही समझना चाहिए कि सब कुछ जो जगत में है सही, लेकिन सनातन नहीं, सब कुछ अस्थाई है। तो उसी तरह सब कुछ जो स्वप्न जैसे, तो उसी तरह हम भी मानते हैं, क्योंकि स्वप्न अस्थाई। हम स्वप्न में सब कुछ जो हम देखते हैं कि मैं राजा हूँ, और सब मेरे सामने धन्यवाद प्रणाम करते हैं, महाराज की जय हो बोलते हैं। फिर वो स्वप्न कलाश हो जाते हैं, हम को देखते हैं नहीं समय है फैक्ट्री जाने के लिए, नहीं महाराज नहीं हो तो वो ही स्वप्न है अस्थाई। तो इस प्रकार भी हम जागृत अवस्था में बहुत कुछ देखते हैं, देखते हैं कि फैक्ट्री है, मुझे फैक्ट्री जाना पड़ेगा, अगर नहीं जाएगा तो पैसा नहीं मिलेगा, फिर चपाती भी नहीं मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये सब मिथ्या है, तो इसलिए फैक्ट्री जाने का कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर नहीं जाएगा फैक्ट्री ऑफिस दुकान और जिसमें भी हम काम करते हैं तो पैसा नहीं मिलेगा, चपाती नहीं मिलेगा। हम बोल सकते हैं कि ये स्वप्न है, लेकिन इस स्वप्न में तो मैं बहुत भूखी हूँ, चपाती नहीं मिलेगी। तो एक्चुअली सब कुछ जो जगत में है तो अस्थाई, और जगत भी अस्थाई, जगत की सृष्टि होती है और कुछ समय चलते हैं और उसके बाद सृष्टि स्थिति और फला है। हमारे परिप्रेक्ष्य से हम जो अभी इस मानव शरीर में है तो इस पूरा ब्रह्मांड बहुत बहुत दिन के बाद इसका प्रलय होगा। लेकिन ब्रह्मा जी भी है, चतुर्मुख ब्रह्मा जो सृष्टि करता है, और ब्रह्मा जी के परिप्रेक्ष्य में तो ज्यादा दिन नहीं हो सृष्टि का प्रलय हो। तो सब कुछ जो इस जगत में है सब कुछ अस्थाई है, और इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि सब कुछ स्वप्न जैसे। लेकिन इसकी अस्तित्व है, जैसे कि कोई भी चीज, जैसे कि ये कपड़ा एक्चुअली वो जुना हो गया है और एक दो तीन बार पहनने है कि इसके इसको फेंकना है या सब छोड़ के पोचा इसके पोचा बनाना। तो ये अस्थाई है, लेकिन अस्थाई है लेकिन सही है तो फर्क है। यदि इसको पहनना है और नहीं पहनना है तो फर्क पड़ते हैं। तो कोई कपड़ा नहीं पहनते तो बाहर जाना उचित नहीं है। अगर हम एकदम नंगा होगा तो बाहर जाते हैं तो लोग कुछ कपड़ा पहनना चाहिए, वो कपड़ा तो वो सब मिथ्या है। ठीक है, ये तो ये एक मिथ्या पुलिसमैन आपको अरेस्ट करेंगे और जेल में जाएंगे और आप मिथ्या जेल में बोल सकते हैं कि ये सभी मिथ्या है। तो मिथ्या नहीं है, व्यवहारिक जीवन में हम देख सकते हैं कि ये सब सभी सही है, सभी तो है। हम बोल सकते हैं कि मैं रास्ते के बीच में कर रहा हूँ और कोई गाड़ी नहीं आता है, फिर एक बड़ा ट्रक आएगा, कोई ट्रक नहीं है, एक ट्रक आती है तो साइड जाओ साइड जाओ, नहीं नहीं कोई ट्रक नहीं आते, फिर एक्सीडेंट होगा। तो हम बोल सकते हैं कि कोई ट्रक नहीं है, लेकिन ट्रक तो है। तो ऐसे समझना चाहिए कि लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सब कुछ स्वप्न है, लेकिन जब दुखी होते हैं तो नहीं बोलते हैं कि सब स्वप्न है, तो इसलिए हम चाव दाल नहीं करेंगे। जब दुखी होते हैं नहीं बोलते हैं ये खाली स्वप्न है, तो कुछ करने का जरूरत नहीं, तो ये खाली बोलना है। सब कुछ स्वप्न है, सब कुछ स्वप्न है, लेकिन वास्तविक तो है। इस प्रकार सब कुछ जो भौतिक जगत में है नित्य है, एक प्रकार की अस्थाई है, और वास्तविक जीवन क्या है, आध्यात्मिक जीवन, तो माया यही है। ऐसे समझना कि इस शरीर स्थाई है और सब कुछ जो इस शरीर के संबंध में है वो सबसे महत्वपूर्ण है, तो वो ही माया, वो भूल धारणा। आत्मा की अस्तित्व स्वीकार नहीं करना वो ही माया है, या खाली मुंह से बोलना हम आत्मा है, हम आत्मा है, लेकिन हम सभी पर अपने केवल शरीर के लिए करते हैं, तो वो ही माया है। तो माया है ये, वो माया का क्या मतलब, मोह भूल धारणा। तो भूल धारणा क्या है कि कृष्ण ही भगवान है और हम कृष्ण की सेवक जन है, और उनकी सेवा आध्यात्मिक स्थिति से इनकी सेवा करना जीवन का उद्देश्य है। जैसे कि इनकी शुद्ध सेवा करने से हम इस भौतिक स्थिति से मुक्त हो सकेंगे और हम स्वलोक धाम जा सकेंगे। स्वलोक धाम जिसमें चिरकाल के लिए भगवान की प्रेममय सेवा करना है। तो माया है ये ही सत्य नहीं मानना कि कृष्ण ही भगवान है, हम आत्मा है, शरीर अस्थाई है, आत्मा स्थाई है, कृष्ण ही परमात्मा है, इनकी सेवा जीवन का उद्देश्य है, तो वो सच्चाई है। और माया क्या है तो ये सत्य नहीं मान, और खाली मुंह से बोल हाँ कृष्ण भगवान है, और अभी टेस्ट मैच चल रहे टीवी में तो हम टेस्ट मैच देखें, तो कृष्ण भगवान है, ठीक है, वो भगवान है, वो रस लीला करते हैं और मैं क्रिकेट करते हैं, तो वो भगवान है, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं जीव हूँ और मैं भोग करूँगा। लेकिन यही समझना चाहिए कि वे ही भोगी है, अहम ही सर्वयाज्ञानं भोक्ता चार्थ, वे ही भोक्ता है, वे ही भोगी है, हम भोगी नहीं है, हम दास है, हम भोग्य है। मतलब हमारे सभी प्रयत्न इनकी प्रसन्नता, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, तो यही सत्य है। और माया क्या है, यही भूल धारणा रखना कि सब कुछ जो जगत में है मेरा भोग के लिए है, तो वो ही भूल धारणा है, और सब लोग यही भूल धारणा में है, सब माया से आच्छादित रहते हैं, क्योंकि सब सोच रहे हैं कि मैं भोगी हूँ और मेरा सब प्रयास अपना भोग के लिए होना चाहिए, मैं और मेरा परिवार, क्योंकि परिवार से ही हम सुख मिलते हैं, इसलिए तो मेरा सब प्रयत्न अपना भोग के लिए होना चाहिए। लेकिन क्या होते हैं, हम प्रयास करते हैं जैसे कि हम सुखी रहेंगे, और क्या सोचते हैं कि अभी मैं कभी 22 इंची टीवी है, तो अगर 28 इंच टीवी मिलता था तो और ज्यादा सुखी होता, तो इसलिए और ज्यादा काम करना चाहिए, तो बहुत संघर्ष करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं ज्यादा पैसा लाने के लिए। लेकिन वास्तव में जब 28 इंची टीवी मिलते तो उससे और ज्यादा सुख नहीं मिलता, और हम सोचते हैं कि अभी छोटे सा बंगलों में रहते, तो अगर अच्छा अपार्टमेंट रहते थे, अपार्टमेंट में रहते थे तो वो और अच्छा होता। तो ऐसे हम सोच सोच गए कि अभी मैं पूरा सुखी नहीं हूँ, लेकिन हम और प्रयास करेंगे और पैसा लेंगे कि वो अपनी स्थिति और अच्छी बन जाएंगे, फिर हम सुखी होंगे। लेकिन माया ऐसा है कि हम कभी संतुष्ट नहीं होते। आप देखिए विचार कीजिए तो कितना क्रॉप आती है, इतना ज्यादा नहीं है तो क्रॉप आती जो है, और महाक्रॉप आती जो है जिनके पास हजार हजार क्रॉप होती है, तो क्या करते हैं? करीब आप सोचते हैं कि आगाम में एक करोड़ आप स्वप्न करते, कल्पना करते कि अगर एक करोड़ रुपया मिलता था तो एक अच्छा बंगलो बनाता था और इसमें आराम पूरा जीवन आराम करूँ। लेकिन क्रोपाती वैसे नहीं, क्रोपाती सब क्रोपाती तो बहुत बेस्ट रहते, सोचते कि मेरे पास खाली 50,000 करोड़ है, वो काफी नहीं है, और एक बड़ा टाउनशिप बनवा दूंगा, नया फैक्ट्री खोलना, और मैं खाली 50,000 करोड़ मेरे पास बहुत कम है और पैसा लाना चाहिए। तो ऐसे सोचते मैं देखता हूँ क्रोपाती हमारे बॉम्बे लंदन अहमदाबाद मंदिर रहते, बहुत चिंतित रहते, बहुत काम करते, सुबह से फोन आते, सुबह रात को भी फोन आते, तो क्या करना है, तो फैक्ट्री में कुछ प्रॉब्लम है तो ठीक है वैसे करो, और अभी वो एक चीज का भाव कम हो जाते है, क्या कर ठीक है वो बैंक से लोन ले लो, और बहुत बेस्ट रहते, बहुत चिंतित रहते, कभी संतुष्ट नहीं होते। तो यही माना हम किसी अवस्थ में भी संतुष्ट नहीं होते, और अगर कोई संतुष्ट होते हैं सोचते और सब ठीक, सब कुछ ठीक है, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है और आराम करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन प्रॉब्लम है मृत्यु सर्वहरश्चाहम, भगवान मृत्यु रूप में आते और बोलते तुम संतुष्ट हो? जी हाँ। आराम करते हैं? जी हाँ। तो जैसा मेरे पास आओ, हम यमराज के पास जाते हैं। लेकिन मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा तालिका है जो सब पाप किया है। दुखालयम अशाश्वतम, इस भौतिक जगत के दो प्रधान लक्षण है, एक है कि सब कुछ यहाँ पर दुखमय है, और दूसरा है सब कुछ अस्थायी। तो यही मैं ऐसे सोचते कि हम भोगी है और इस जगत में हम सुख और शांति मिल सकते, तो वो ही माने। तो सब कुछ जो जगत में है तो है, तो माया क्या है? यही माया है, ऐसे सोचते कि सब कुछ जो जगत में है मेरा भोग करने के लिए है, वो ही भोग। सब कुछ जो जगत में है भगवान की संपत्ति है, कुछ हमारी नहीं है। हम खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं, और बीच में संघर्ष करते हैं, सब कुछ हमारा नाम में डालो, तो ये मेरा जमीन है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा बैंक बैलेंस है, तो वास्तव में कुछ हमारे नहीं है, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की सब। तो इसलिए हम इसी प्रकार से सुख शांति मिल सकते हैं, यदि हम स्वीकार करते हैं कि कुछ मेरा नहीं है, सब कुछ कृष्ण की है, इसलिए सब कुछ जो भगवान की दया से हमारे हाथ में है, सब कुछ इनकी सेवा में अर्पण करना चाहिए। जैसे कि भक्तिनाथ ठाकुर हमारे महान आचार्य বলেন কি মানস দেহ গেহ যো কিছু মোহ আপিলুন তো পদে নন্দ কিশোর। হে নন্দ কিশোর, নন্দলাল কৃষ্ণ, আবি তক মে সোচ রা থা কি সব কুছ মেরা হ্যা, লেকিন আবি মন মানস দেহ শরীর গেহ গৃহ সব কুছ জো মে অহংকার সে সোচ রা থা মেরা হ্যা, মে আপকি সেবা মে অর্পণ করতা হুঁ। তো ইহি ভক্তি হ্যা, ভক্তি বহুত হি সরল, লেকিন ভক্তি করলে সে মায়া সে ছুটনা, মায়া বহুত কঠিন, মায়া সে মুক্ত হওয়া বহুত বহুত হি কঠিন। লেকিন যদি হম ঐসি কৃষ্ণ কি ভক্তি করেন কি হে ভগবান হে কৃষ্ণ কুছ মনে নেই হ্যা, সব কুছ আপকি, সব কুছ আপকি সেবা মে ডালা চাহিয়ে, তো ওই ভক্তি হ্যাঁ। করোষি অদশনাসি হোষি দদাসি তপস্যসি কৌন্তেয তৎ করুষ্ব মদার্পণম। গীতা মে কৃষ্ণ বলতে হ্যাঁ কি সব কুছ জো তুম করতে হো, সব কুছ জো তুম দান মে দেতে হো, সব তপস্যা জো তুম করতে হো, আর সব কুছ জো মন সে সোচতে হ্যাঁ, মুহ সে জো বলতে হ্যাঁ, আর শরীর সে প্রয়াস করতে হ্যাঁ, তো সব কুছ ভগবান শ্রী কৃষ্ণ কি সেবা মে ইনকি প্রসন্নতা কে লিয়ে অর্পণ করনা চাহিয়ে। লেকিন কেসে সবই প্রয়ত্ন ভগবান কি সেবা মে লগাতে হ্যাঁ, তো উসলিয়ে গুরু আর শাস্ত্র সে শিখনা চাহিয়ে। যদি হম সোচতে ঠিক হ্যাঁ ভগবান কে কি সব কুছ জো খাটতে হ্যাঁ, তো তাহলে ভগবান কো অর্পণ করতে চাই, তো আজ হম বিফ খেয়ে ও পাইলে ভগবান কো অর্পণ করেন, তো এসে নেই চলে, তো কি ভগবান তো আমিষ আহারী নেই হ্যাঁ, বে গোপাল হ্যাঁ, গো মাংস খানে বালে নেই হ্যাঁ, কৃষ্ণ সব কুছ কর সকতে হ্যাঁ, এই ভগবান, লেকিন ভগবান কা পছন্দ হ্যাঁ মাংস মাছলি অন্ডা পেঁয়াজ লসুন ভি নহি খানে, ইসলিয়ে গীতা মে কৃষ্ণ বলতে পত্রং পুষ্পং ফলং তয়ং ইয়ো মে ভক্ত্যা প্রয়চ্ছতি তদহং ভক্তি পাহৃতম অষ্টামি পরতাত্মনঃ। কৃষ্ণ বলতে কি মুঝকো ফুল ফল জল পত ঐসি চিজো মুঝকো অর্পণ করো, কৃষ্ণ কবি নেই বলতে মুঝকো মাংস মাছলি আইস আমিষ মুঝকো অর্পণ করো, কৃষ্ণ কবি নেই বলতে, তো ভক্তি বহুত হি সরল, লেকিন কেসে করনা, তো গুরু সাধু ও শাস্ত্র সে শিখনা চাহিয়ে, আর এস কালি যুগ মে জিসমে বহুত অসুবিধা হো, আর সবই ধার্মিক বিধি পালন করনা বহুত কঠিন, এস কালি যুগ মে এক বহুত হি সরল উপায় ভক্তি প্রাপ্ত করলে চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রাধা কৃষ্ণ নারায়ণ, চৈতন্য মহাপ্রভু রাধা কৃষ্ণ সম্মিলিত রূপ রাধা কৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু কি কৃপা সে এস কালি যুগ মে ভক্তি বিশেষ কর হরি নাম কে দ্বারা করনা হ্যাঁ, হরে নাম হরে নাম হরে নাম এইব কেবলম কলো নাশ্চৈব 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 ভক্তি রমিত। কলি যুগ মে হরে নাম হরে নাম হরে নাম তিন বার কেন इसका अंत है, काम के द्वारा नहीं है, ज्ञान के द्वारा नहीं है, योग के द्वारा नहीं है, केवल शुद्ध कृष्ण भक्ति के द्वारा, विशेषकर इनके पवित्र नाम जप और कीर्तन करने से परम गति प्राप्त होते हैं। तो हरि नाम करना चाहिए, ये भक्ति का, भक्ति में ये सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन साथ ही साथ भक्तों से और शास्त्रों से सीखना चाहिए शुद्ध भक्ति क्या है, क्योंकि नास्तिक गण, असुरी गण बहुत प्रकार के काल्पनिक मतवाद उत्पादन करते हैं। जैसे कि आज हमारे पास कि असुरी गण बोलते हैं कि जगत कोई अस्तित्व नहीं है, कोई भगवान नहीं है, केवल भौतिक पदार्थों का संयोग से सृष्टि हुई, कोई नियंत्रण नहीं है, तो सब कुछ जो है तो ऐसा होता ही और वास्तव में नहीं होते, तो ऐसे सब बकवास सब बिल्कुल। तो ये सब भूधारणा बहुत ही प्रचलित है, तो इसलिए शास्त्र से ही समझना चाहिए कि हम हरे कृष्ण बोलते, लेकिन इसका क्या अर्थ है, कृष्ण यही शब्द से क्या समझना चाहिए। यदि हम सोचते कि हम हरे कृष्ण बोलते हैं और बोलने से हम कृष्ण के साथ लीन हो जाएंगे, तो वास्तव में हम मूल से हरे कृष्ण बोलते हैं, लेकिन हृदय में भक्ति नहीं होती, क्योंकि भक्ति में ऐसी धारणा नहीं हो सकती कि हम भगवान के समान हो जाएंगे, वो संभव नहीं है। भक्ति का मतलब कि कृष्ण है भगवान, वे प्रभु है और हम दास हैं, और हरे कृष्ण ये कहने से क्या समझते हैं, ये प्रार्थना है, हे राधा हे कृष्ण आपकी सेवा में लगा मुझे। लेकिन यदि हम सोचते हैं कि वे कृष्ण है मैं नहीं हूँ और हम दोनों समान हैं, तो भक्ति में भक्ति नहीं होगी, भक्ति होने की कोई प्रश्न नहीं होगा यदि ऐसे समझना है। तो इस प्रकार की भू धारणा बहुत ही प्रचलित है कि भक्ति करना है और उसके बाद तो खुद भगवान बन जाते हैं, ऐसे सब अनेक ऐसे भू धारणा। तो यही समझना चाहिए कि कृष्ण ही भगवान, यही सब शास्त्र का सब सिद्धांत, और हम जीव है कृष्ण दास और इनकी सेवा करना चाहिए, और मुक्ति के बाद भी वे प्रभु होते हैं और हम दास होते हैं। ऐसा नहीं है कि मुक्ति के बाद हम भगवान के समान हो जाए, ऐसा नहीं है। हम जीव है, जीव ऐसे रूप है कृष्ण नित्य दास, हमारी सनातन स्थिति है भगवान की सेवा में, तो यही समझना चाहिए। और ये भी समझना चाहिए कि जो कहते हैं कि बाद में हम और अभी भी हम भगवान के साथ लीन हो गए हैं और बाद में लीन हो जाएंगे और सब भगवान है, तो जो ऐसे कहते हैं तो एक्चुअली साधु नहीं, कृष्ण भगवान इस गीता में बोलते हैं कि जो वैसे बोलते हैं तो भक्त नहीं है, साधु नहीं है, असुर है, बदनाम, क्योंकि कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता नहीं मानते और श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता अर्थात कि कृष्ण भगवान है उसको नहीं मानते और दूसरा मतवाद स्थापना करने प्रयास करते हैं। तो ये सब स्पष्ट समझना चाहिए। इसलिए संप्रदाय भी है ना, ये मंत्र से विश्ववाद के न था। यदि हम हरे कृष्ण और ये सब कहते हैं, लेकिन अनुमोदित वैष्णव संप्रदाय में शिक्षा नहीं लेते हैं, तो हरे कृष्ण कह के भी तो हम वास्तविक भाव अर्थात कृष्ण प्रेम नहीं मनेंगे। क्योंकि यदि हम स्पष्ट वास्तविक धारणा नहीं मिलते तो जो हम भूल धारणा मिलेंगे। हम किस लिए इस भौतिक जगत में गिर गए हैं? क्योंकि हमें भूल गया है कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख अशेष माया सारे जगह संसार भूख। क्या भूख? हम इस भौतिक जगत में है और जन्म मृत्यु जो आदि आदि दुख मिलते क्यों? क्योंकि हमें भूल किया है। क्या भूल? कृष्ण को भूल किया और वो ही भूल से अनेक भूल लाते हैं। क्योंकि माया हमको खींचते कृष्ण को और वो भूल कि हम कृष्ण को भूल सकते, उससे हम कृष्ण को बहिर्मुख भावना करते, मतलब द्वेष भावना करते। तो भक्ति क्या है? यही समझना और यही स्वीकार करना कि कृष्ण ही भगवान है और हम कृष्ण का दास है और उनकी सेवा करना यही सनातन धर्म है। और कभी भी संभव नहीं होगा कि हम कृष्ण के समान होंगे, वो ही बहुत बड़ी भूधा है। तो यही समझना चाहिए। तो अगर हम वैसे ही समझते हैं तो जब हम हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं तो हम पूर्ण फल मिल सकते अर्थात कृष्ण फल। और जब तक हम सोचते कि हरे कृष्ण नहीं स्वयं कृष्ण बन जाऊंगा, तो तब तक हरे कृष्ण कहने से हम कृष्ण नाम कहने से एक्चुअल पाव नहीं मिलेंगे। क्योंकि एक्चुअल पाव है कृष्ण प्रेम और कृष्ण प्रेम क्या है? यही भावना, ये भावना में एकदम तल्लीन होना कि मैं कृष्ण का दास हूँ। तो सब जो ऐसे बोलते हैं कि कोई भगवान नहीं है, सब भगवान है और सब कुछ स्वात्मिक जैसे है, कृष्ण भी वो काल्पनिक है, तो सब जो ऐसे भक्त है तो भक्त नहीं है, सब कृष्ण भक्त, सब असुर। तो ये सब भूधारणा से मुक्त होना चाहिए, भगवत गीता यथारूप पढ़ने से। इसलिए हम बारम्बार आप पुण्यात्माओं को बोलते और आपसे निवेदन करते कि हम स्वयं नहीं बोलते, चैतन्य महाप्रभु की वाणी है, भज कृष्ण बोलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा सभी लोगों को, भज कृष्ण कृष्ण का भजन करो, बोलो कृष्ण हरे कृष्ण बोलो और करो कृष्ण शिक्षा। गीता में श्री कृष्ण उपदेश देते हैं तो वो उपदेश का सीखना चाहिए। और कैसे सीखना चाहिए? भगवद गीता यथारूप, मतलब बहुत गीता व्याख्या है, बहुत पंडित गीता का भावार्थ लिखते हैं, लेकिन एक्चुअली कृष्ण जो कहते हैं तो उसके अनुसार सब कार्य नहीं लगते। श्री कृष्ण गीता में स्टार्ट में कहते हैं कि अथपरतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। मैं सब ऊपर हूँ, मेरे समान और मेरे ऊपर कोई नहीं है, लेकिन ऐसे पंडित साधु तथाकथित साधु लिखते हैं कि सब भगवान। तो अगर सब भगवान है तो भगवान का शब्द का क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है। भगवान का मतलब जो परम है, सबके ऊपर है। अगर हम बोलते हैं कि सब भगवान है तो वो संभव नहीं है। तो सबके ऊपर एक होना चाहिए। तो सब तो सबके ऊपर नहीं हो सकते। भगवान का मतलब जो सबके ऊपर है, और इसके मतलब है कि भगवान के अलावा तो सब इनसे नीचे है। तो यही समझना चाहिए, हम भगवान के नीचे है, हम दास है, यही प्रभु है, हम दास है। तो जो विपरीत व्याख्या करते हैं, तो वैसे पंडितों का गीता पढ़ने से हम भगवद गीता यथारूप, मतलब कृष्णा जैसे बोले तो वैसे हम ज्ञान नहीं लेते। तो दूसरी भूल धारणा में, इसलिए भगवद गीता यथारूप अध्ययन करना चाहिए और भक्तों से सुनना चाहिए। तो भक्ति कैसे हो, भक्ति क्या है, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, तो यही हमारे निवेदन है। भज कृष्ण, बोलो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, हरे कृष्ण।